Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तनोभर् व्यसेमदेवहितं यदायुः सस्ते न इन्द्रो बृधस्रवाः सस्ते नः पूखा विश्ववेदाः सस्ते नस्तार्क्षो अरिष्टरेमिः सस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
परमात्मा की ओर संतों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के विषय में। इसमें 12 मंत्र है। इस 12 मंत्र को आधार करके गौड़पाद भगवान ने 4 कारिका लिखी है। इसमें 4 कारिका है प्रकरण, जिसमें वेदांत के समस्त सारों को संग्रहित कर दिया है। इसके लिए लिखते हैं भगवान भाष्यकार, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। कौन? इदम प्रकरणम। ये जो प्रकरण ग्रंथ है, सार है। सार तो इस चारों प्रकरण में क्या तात्पर्य है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो वही होता है कि मोक्ष है। मुख्य प्रयोजन तो मोक्ष होता है, और उसी के साथ साथ ये बताया जाता है, जैसे हम चिकित्सा शास्त्र में देखते हैं, चिकित्सा शास्त्रवत सर्वम चतुर्वर्गम ही दर्शनम, योग सूत्रकार के भाष्यकार बोलते हैं, हेयम हानम उपायश्च चतुर्थो मोक्ष इच्छते। 4 हो गए देखो, हेय हान उपाय और मोक्ष। आयुर्वेद शास्त्र में देखिए, हेय हेय जिसको छोड़ना है, रोग है ना, रोग आ गया तो दुख आ जाता है, पीड़ा होती है ना शरीर में, तो हेय कौन है? रोग, रोग को पहचानता है वैद्य, हो गया है या रोग। और उसका हान, हान उसकी निवृत्ति, रोग की निवृत्ति करता है वैद्य। और उसका उपाय रोग की निवृत्ति कब होगी? ओ हाँ, औसत 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 को जानने मात्र से होगा। हाँ, औसत का सेवन करना पड़ेगा, सेवन करना तब जाकर के आरोग्य की प्राप्ति, स्वस्थता की प्राप्ति हो। ये चार बातें बताते हैं चिकित्सा शास्त्र में। औसत को जानने मात्र से और रोग को जानने मात्र से आपको आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आजकल तो ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है, हो गया ना? शास्त्र की कमी है क्या? मंत्रों की कमी नहीं है और ज्ञान की भी कमी नहीं है, है ना? लेकिन कमी किसमें है? उसका सेवन, सेवन सेवन हम नहीं कर पा रहे हैं। सब पता है, हैं, कि जो कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, उपासना से चित्त की स्थिर है ना स्थिति होती है, स्थिर होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है, ये तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? हैं? तो फिर किसमें कमी? उसका हम सेवन नहीं कर पा रहे हैं, सेवन, है ना? जैसे औसत का सेवन नहीं करेंगे और फिर उसके साथ साथ पथ्य का जो पथ्य होता है परहेज, है ना? परहेज जब नहीं करेंगे तब जाकर के रोग की निवृत्ति नहीं होगी, समझ में ना? इसी प्रकार से कर्म उपासना ज्ञान तो चाहिए, इसके साथ साथ आपको पथ्य भी पालन करना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा, विवेक वैराग्य भी चाहिए, तब जाकर के ज्ञान जो है ये हृदय में उतरता है, समझ में ना? तो चिकित्सा जैसे चार बातें को बताता है, हेयम हानम उपाय और आरोग्य, स्वस्थता की प्राप्ति। इसी प्रकार ये शास्त्र विचारों को बताता है ना? मुख्य तो मोक्ष ही है, परम प्रयोजन मोक्ष हो गया, और उसका हेतु कौन है? हेय अविद्या। हेय कौन है? अविद्या, अज्ञान, और उसका हान करना है, अज्ञान की निवृत्ति करनी है, और उपाय क्या है? ज्ञान। उपाय क्या है? ज्ञान होगा, आत्मा का साक्षात्कार, ये हो गया उपाय। आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन कैसे होगा, किस नेत्र से होगा? इस नेत्र से नहीं होगा, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र। जैसे सपनों में देखते हैं कि सपनों का पदार्थ किस नेत्र से दिखता है? इस नेत्र से दिखता है क्या? स्वप्न का नेत्र, स्वप्नों का नेत्र से स्वप्न दिखता है। आज जागृत में आएंगे तो ये भी जागृत का नेत्र हुआ, माइक नेत्र। तो माइक नेत्र से क्या दिखाई देगा? आत्मा दिखाई देगी कि माइक पदार्थ दिखाई देगा? हाँ, ये भ्रांति है कि इसी नेत्र से आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, ना इसी नेत्र से नहीं हो सकता है। भाई आपकी बुद्धि कितनी भी जो है तेज हो, है ना, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बोले हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हाँ, तो उसको पकड़ लेंगे आत्मा को? आत्मा को कैसे पकड़ोगे? तुम्हारी बुद्धि कितनी भी तेज हो, विष करेगी किसको? इदम को तो करेगी ना, समझ में कि नहीं? ये माइक नेत्र, माइक बुद्धि विष करेगी किसको? नाम को और रूप को, दृश्यमान जगत को ही विष करेगी, और नाम रूप से तो रहित है, तो कैसे पकड़ेंगे उसको? ज्ञान नेत्र से, ज्ञान नेत्र से, है ना? और ज्ञान नेत्र किसकी कृपा से खुलेगा? हाँ, परमात्मा की कृपा से ज्ञान नेत्र खुलता है, गुरु की कृपा से, हाँ, ये अपनी शक्ति से ज्ञान नेत्र तो खुलता नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु हो करुणाम बिना, सदगुरु की कृपा नहीं होगी साधक के ऊपर, ये नेत्र कैसे खुलेगा जी? इसको ज्ञान नेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ये तीन नेत्र किसकी कृपा से खुलेगा? गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से खुलता है। तो इसलिए यहां पर ये बताना है, चार बातें को बताते हैं, हेयम, हानम, उपाय और चौथा क्या है? मोक्ष, परम प्रयोजन मोक्ष है। तो मोक्ष हो गया परम प्रयोजन। तो इसमें चार प्रकरण जो लिखा, कल आप लोगों को संक्षिप्त से बता रहा था लेकिन समय हो गया था, कौन कौन सा है? पहला है आगम प्रकरण, आगम प्रकरण। तो आगम प्रकरण का अर्थ क्या हुआ? यहां पर भाष्यकार लिखते हैं, ओमकार निर्णयाय, आगम प्रकरण में ओमकार का निर्णय हुआ है। ओमकार, तो ओमकार का निर्णय करेंगे, तो ओमकार का निर्णय करेंगे तो क्या होगा? अरे ओमकार का ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, है ना भाई? ओमकार का निर्णय करोगे तो ओमकार का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, है कि नहीं? हाँ भाई, ये भैंस का निर्णय करेंगे तो भैंस का ज्ञान होगा ना, तो गौ का ज्ञान कैसे होगा, है कि नहीं? जिस वस्तु का निर्णय करेंगे तो उसी वस्तु का ज्ञान होगा, है कि नहीं? तो ये जो है पाश्चात्य लोग वाले यही शंका करते हैं, भाई यदि ओमकार से ज्ञान होता है परमात्मा का तो बाकी शब्द से ज्ञान क्यों नहीं होगा? शब्द तो शब्द ही होता है, ऐसी शंका करते हैं ना लोग। ओंकार में क्या विशेषता है? कहते हैं कि हाँ विशेषता है, इसमें युक्ति के द्वारा आप निर्णय नहीं कर सकते, हाँ, इस मंत्र में ही शक्ति है, बाकी शब्द में शक्ति नहीं है, इसमें आप युक्ति क्या लगाएंगे? बात पढ़ देंगे नहीं। एक श्रद्धा थी, श्रद्धा, श्रद्धा, शास्त्र बोल रहा है कि ओमकार मंत्र के द्वारा आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, शास्त्र बोल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? आगम प्रकरण, आगम। आगम किसका नाम है? आगम शास्त्र का नाम है, ठीक है ना? आगम शब्द के दो अर्थ होते हैं, हाँ, आगम शब्द के दो अर्थ, एक योगी करता होता है, एक रूढ़ अर्थ होता है। योगी अर्थ, रूढ़ अर्थ, रूढ़ अर्थ करेंगे तो आगम शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? भगवान शिव जी ने जो माता जी को उपदेश दे दिया उसको कहते आगम, है ना? और भगवान विष्णु ने जिसको अनुमोदन किया, हाँ ये प्रामाणिक है, उसी को कहते आगम। ये रूढ़ अर्थ बोल दिए आपको। और योगी का अर्थ लेंगे तो क्या होगा? शास्त्र, दोनों हो जाएंगे, है ना? वेद भी हो जाएगा और भगवान शिव जी ने जो उपदेश किया माता जी को, है ना, जिसको निगम बोलते, निगम धर्म, है ना? आगम और निगम है कि नहीं? ये दो अर्थ हो गए, रूढ़ अर्थ। आगम शब्द का रूढ़ अर्थ क्या निकलेगा? भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो सुनाया इसको कहते हैं आगम, रूढ़ अर्थ। और निगम का रूढ़ अर्थ हो गया वेद, वेद हो गया, ठीक है ना? लेकिन आगम शब्द का यदि योगी का अर्थ लेंगे तो क्या होगा? असमंता, परंपरा से प्राप्त कर रहे हैं, क्या समझा? असमतल परंपरा से, वेद को भी हम परंपरा से प्राप्त करते हैं, नारायणम पद्म होम तो वशिष्ठम बोलते ना, और भगवान शिव जी ने सुने दे वो भी परंपरा से आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? पात्र में ही, ठीक है? तो आगम शब्द का ही योगी अर्थ लेंगे, परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आगम। तो दोनों हो जाएगा, वेद भी हो जाएगा और भगवान शिव जी के द्वारा जो प्रोक्त है, दोनों अर्थ निकल जाएगा। तो दोनों को यहां पर लेना है, है ना? दोनों को लेना है कि यहां पर शास्त्र प्रमाण है कि ओमकार के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान होता है, ओमकार में ऐसी शक्ति है। श्रद्धा के बिना आपको ज्ञान नहीं हो, श्रद्धावान लवते ज्ञानम का कहा कि नहीं? श्रद्धा भाई, श्रद्धा के बिना भी आपका व्यवहार भी कैसे होगा? आजकल जो बच्चे लोग ना बड़े हो जाते हैं कि माता पिता की बातों पर श्रद्धा नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? हाँ, पत्नी की बातों पर श्रद्धा रखेंगे, हो गई नहीं? बोलते भी हम इतने पढ़े लिखे हो गए, अभी भी आपकी बात मानते रहेंगे, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ लिया, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ लिया तो श्रद्धा नहीं होती है, देखो, है ना? लेकिन जिसने तुमको सिखाया कि ये पिताजी है, बच्चा जब पैदा हुआ तो सिखाया कि नहीं? माता जी ने सिखाया कि नहीं, है ना? ये पिता है, ये तुम्हारा भाई है, तो उस समय तुमको तुम्हारी श्रद्धा थी कि नहीं थी, है ना? श्रद्धा किया कि नहीं आपने? श्रद्धा के बिना तो आपका व्यवहार चलेगा नहीं, है ना? ये तुम्हारे गुरु है, है ना? ये रोटी है, दाल है, भात है, है ना? ये सब सभी बातों के ऊपर श्रद्धा किया कि नहीं किया? और अभी जब बड़ा हो गया, अरे भगवान नाम का जप करो, तो बच्चा क्या बोलेगा? अरे जप करने से क्या होता है जी? देखो किसमें गलती हो रही है, है ना? ये गलती इसमें हो रही है, देखो श्रद्धा नहीं रखता। फिर बड़ा होने के बाद हाँ, जो अनुकूल लगे बुद्धि को उसी में श्रद्धा रखता है, जो प्रतिकूल हो तो श्रद्धा नहीं रखता है ना? अरे बोलते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। पुत्र बड़ा आने के बाद क्या बोलता है? ये तो अंधश्रद्धा है। उस समय तुम नहीं कह रहे थे कि ये अंधश्रद्धा है, ये पिता है, माता है, भाई है, है ना? इसलिए ये परमार्थ मार्ग में भी क्या है, श्रद्धा के बिना तो आपका व्यवहार नहीं चल सकता है। ना श्रवण कर सकते हो, ना मनन कर सकते हो, ना निध्यासन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया, इस प्रकरण का नाम आगम प्रकरण। यहाँ भाष्यकार भगवान लिखते हैं आगम प्रधानम, है ना? यहाँ पर प्रधानता किसकी है? शास्त्र की प्रधानता है, मतलब श्रद्धा की प्रधानता है, युक्ति की प्रधानता नहीं। केवल युक्ति के सहारे से उसको पकड़ लेंगे परमात्मा, कैसे पकड़ोगे युक्ति से? श्रद्धा के बिना तो आप, हाँ, श्रद्धा पहले हो शास्त्र के प्रति, फिर उस श्रद्धा के बल पर, शास्त्र के बल पर हम युक्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? शास्त्र बोल रहे कि अग्निहोत्र जाग करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अग्निहोत्र में जो या सर्व काम हो, शास्त्र बोल रहा है, तब फिर युक्ति कर सकते हैं। भाई अग्निहोत्र जाग से जो पुण्य होगा उसका फल जो सुख है, ये सुख इस शरीर में नहीं हो सकता है, इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना होगा। ये युक्ति तब बाद में कर सकते हैं, पहले आपको मानना होगा, है ना भाई? ओम ग्रह उपासना करोगे तो ब्रह्मलोक में जाओगे, है ना? तो उसमें जो प्राप्त होगा, यहां पर वो प्राप्त युक्ति बाद में कर सकते हो, है ना? इसलिए उत्तम अधिकारी के लिए क्या बोल दिया, इस प्रकरण का नाम आगम प्रधानम, है ना? ओमकार का विचार करेंगे, ओमकार का विचार करेंगे इस प्रकरण में, लेकिन तात्पर्य किसमें है? ज्ञान में। परमात्मा का ज्ञान कराना है ओमकार के माध्यम से, ओमकार का निर्णय ये फल नहीं है, होगा ना? ये अवान्तर फल है। मुख्य फल क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार। इसलिए भगवान भाष्यकर बोलते हैं आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायम, आत्मज्ञान का उपाय क्या है? ये ओमकार का निर्णय ओमकार के माध्यम से करेंगे, है? ओमकार के माध्यम से ओमकार का ज्ञान करना, ये नहीं तात्पर्य। ओमकार का ज्ञान करके कि ओकार उकार मकार क्या है, ओकार उकार मकार क्या है, ऐसा ज्ञान होने पर किसका होगा? परमात्मा का ज्ञान होगा। ओमकार जड़ है, ओमकार जड़ का प्रकाश जिससे हो रहा है, ओम आप उच्चारण करते हैं, ओम उच्चारण करते ना, उच्चारण करेंगे तो आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? ये जो भान हो रहा है ओमकार का, ओम करके, ये भान जिससे हो रहा है वो आत्मा है, होगा ना, वो चेतन है। कि यहां पर एक प्रक्रिया आएगी, विलक्षण प्रक्रिया है ना, इसका नाम हो गया आगम प्रकरण, आगम प्रकरण। अच्छा, ओमकार के द्वारा ओमकार का निर्णय करने पर आत्मा का ज्ञान हो गया, फिर आगे प्रकरण लिखने की क्या जरूरत है, आत्मज्ञान तो हो गया, मोक्ष तो प्राप्त हो गया, है ना। आगे जो तीन प्रकरण लिख रहे हैं, लिखने की क्या जरूरत है, व्यर्थ हो गया। कहते हैं देखो, व्यर्थ नहीं है, ज्ञान हो सकता है, ओमकार के माध्यम से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन क्या होता है, आपकी श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, तब ना सुन रहे हैं जी। श्रद्धा यदि नहीं होती क्यों सुनेगा वेदांत का, वेदांत का श्रवण क्यों करेगा जी, है? लेकिन होता क्या है, लेकिन बुद्धि में ये बात नहीं बढ़ती है, शास्त्र बोल दिया कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, ठीक है ना भाई, नेह नानास्ति किंचन बोल दिया, हाँ, भगवान शंकराचार्य जयंती के दिन बोलते ना विचार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना पर बोलते ना, है ना, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जगत कैसा है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये बात तो मानते हैं, हमारी श्रद्धा तो है, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है कि आचार्य लोग बोल रहे हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता है, यहां तक तो मान लिया, श्रद्धा तो रह गई, लेकिन हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, रसगुल्ला भी मिथ्या है, हो गया ना, पूरा जगत मिथ्या, तो रसगुल्ला ही मिथ्या हो गया, हाँ, तो रसगुल्ला खाने पर जो है सुख मिलता कि नहीं मिलता है, हाँ ना, तो मिथ्या हो तो फिर सुख कैसे मिलेगा, ये देखो, बुद्धि हमारी स्वीकार नहीं करती है, जगत के मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं कर पाती है, ये हो गया प्रतिबंधक, हो गया ना, क्योंकि बुद्धि में दो दो चीजें रहती है, बुद्धि में एक तो श्रद्धा है, दूसरी क्या है, युक्ति, दूसरी क्या है, युक्ति है, युक्ति है ना। और श्रद्धा का केंद्र किसमें है, शास्त्र में, श्रद्धा का बल किसमें है, शास्त्र है ना, शास्त्र श्रवण करेंगे तो श्रद्धा बढ़ती रहती है, है ना। और बुद्धि, बुद्धि का केंद्र किसमें है, युक्ति, युक्ति, बुद्धि जो है ना, युक्ति को, युक्ति की सहारा लेती है बुद्धि, हो गया ना। और श्रद्धा किसकी सहारा लेगी, हाँ, ये बात दो दो बातें ध्यान में रखिएगा, है ना, श्रद्धा तो आ गई शास्त्र के प्रति, लेकिन बुद्धि में जो युक्ति है, युक्ति, युक्ति, तर्क, तर्क जिसको बोलते हैं, है ना, तो युक्ति जब ज्यादा बढ़ेगी, तर्क जब बढ़ेगा, तो वो इसके काटने में लगेगा इसको, बुद्धि का इस्तेमाल किसमें करता है व्यक्ति, हाँ, कुतर्क में, कुतर्क, कुतर्क, कुतर्क बोलते हैं उसको, सही में एक कुतर्क को जो है क्या बोलते हैं, अपराध वासना, एक वासना है इसमें, आगम शास्त्र जो बोलता है ना, आगम शास्त्र, है ना, आगम शास्त्र इसको क्या बोलता है, अपराध वासना, अपराध वासना, ये अपराध है व्यक्ति का, है ना। आपकी श्रद्धा तो हो गई शास्त्र के प्रति, लेकिन हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है कि जगत मिथ्या कैसे होगा जी, बहुत लोग शंका करते हैं कि नहीं, जगत मिथ्या कैसे हो जाएगा, जिसने श्रद्धा कर लिया उसके प्रति कह रहे हैं, श्रद्धा होने पर भी कुतर्क के कारण बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है जगत के मिथ्यात्व को, इसी का नाम क्या है, अपराध वासना। तीन प्रकार की वासना होती है ना, एक है काम वासना, कर्म वासना और अपराध वासना, आगम शास्त्र इसको तीन प्रकार से बोलता है ना, हाँ। तो कर्म वासना से क्या है, बुद्धि चंचल हो जाती है ना, ये थोड़े से करेगा, ये थोड़ा सा करता रहेगा जी, है ना, जो है दिन भर करता रहता है व्यक्ति, कर्म में लगा रहता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, बुद्धि चंचल हो जाती है, कर्म वासना से बुद्धि में चांचल्य चंचलता आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी वासना क्या है, काम वासना, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, समझे ना। हाँ, तो काम वासना से क्या है, हाँ, बुद्धि में जड़ता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, बुद्धि जड़ हो जाएगी, जड़ हो जाएगी तो बात को पकड़ नहीं सकती है, कितना भी श्रवण कर लो, हाँ, बुद्धि यदि कमजोर है तो पकड़ेगी कैसे, समझ में ना। तो तीसरी के ये तीसरी सबसे ज्यादा खतरनाक है, अपराध वासना। अपराध वासना क्या है, भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है, बुद्धि तीव्र भी है, समझ में है कि नहीं, लेकिन उतर का बुद्धि में आ गया तो हमेशा काटने में लगेगा, जो बोलते जाएंगे ना ना ऐसा कैसे होगा, है ना, जगत मिथ्या कैसे होगा जी, है ना, जगत तो दिख रहा है सब, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मिथ्या कैसे हो जाएगा, है नेहा नाना किंचना, है जो सब जो है आत्मा, आत्मा ही एकदम सर्वम, सब आत्मा ही हो गया फिर, सब तो एक हो गए फिर, गंगा जी का जल भी एक हो गया, आपका जो मध्य जो है शराब वो भी एक हो गया, नहीं हो गया, फिर गंगा जल से क्यों कर्म करते हैं, उससे क्यों कर्म नहीं करते हो, जो कि तर्क लगाएगा, है ना, किसका इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो कुतर्क होने पर, ठीक है ना। तो देखो कर्म वासना हो, यद्यपि कर्म वासना है ना, कर्म वासना किसी के साधक में हो हैं, लेकिन ये यदि न हो और बुद्धि कमजोर भी क्यों न हो, बुद्धि कर्म कमजोर भी क्यों न हो, लेकिन अपराध वासना यदि न हो, बुद्धि में यदि कुतर्क न हो, है ना, तो हमारी बुद्धि पकड़ सकती है, बुद्धि सरल हो, कहने का मतलब जैसे जनक जी, देखो जनक जी, जनक जी में बुद्धि है कमजोर है उनकी, अपराध वासना नहीं है, कुतर्क नहीं है, हैं, फिर भी उनको ज्ञान हो गया, कर्म करते हुए भी ज्ञान हो गया, देखो कर्म वासना तो है, समझ में ना, और आपकी काम वासना भी है, है ना, थोड़ा बहुत काम वासना भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि जगत का कल्याण करना है, लोक संग्रह करना है, लोगों के लिए वासना हो भी जावे उपकार के लिए, है ना, और बुद्धि में चंचलता भी क्यों ना हो, कर्म वासना हो, लेकिन ये जो अपराध वासना यदि न हो, है ना, कुतर्क यदि न हो, तो आपकी बुद्धि पकड़ सकती है, हो गया ना, शास्त्र को पकड़ सकती है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो किसी के मन में यदि कुतर्क हो, मान लो श्रद्धा होने पर भी, भाई आप जो बोल रहे हैं ना स्वामी जी, बात तो ठीक है, बोलते ना भगत लोग, स्वामी जी आप जो कह रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन, लेकिन का शब्द प्रयोग हो गया, लेकिन हमारी बुद्धि तो नहीं मान रही है ये प्राय होता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जिसकी बुद्धि में कुतर्क हो, तो कुतर्क को शांत करने के लिए, कुतर्क को यदि युक्ति के द्वारा हम शांत कर देंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हो गया ना, बुद्धि मान लेगी फिर, है ना। इसलिए कुतर्क को शांत करने के लिए आचार्य जी ने व्याख्या करते हैं, आचार्य लोग व्याख्या क्यों करते हैं, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं, उत्तम अधिकारी के लिए कोई व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, सही बात है कि नहीं, उत्तम अधिकारी के लिए कोई ज्यादा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया ना, केवल आपके महावाक्य से ज्ञान हो जाएगा, होगा कि नहीं, विचार कर लो, ज्ञान तो किससे होगा, महावाक्य से भी हो सकता है, लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए,